हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ये कैसे हो सकता है? मेरी शक्तियां बेअसर कैसे हो सकती हैं, वो भी इन मामूली इंसानों पर? इतना बोलते हुए वो गुस्से में उन दोनों की तरफ और आगे बढ़ी। चंद्रिका ने वीरेश का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपने नाखून वो वीरेश के हथेलियों पर लगभग धंसाने लगी थी डर की वजह से, और उसने अपनी आंखें भी आधी से ज्यादा बंद की हुई है। लेकिन उस चुड़ैल को अपनी तरफ आते देख उसे घबराहट हो रही है। वो पीछे की तरफ जाना चाहती है, लेकिन वीरेश ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए अपने करीब ही रोका हुआ है। नहीं, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी चंद्रिका, वीरेश ने उसे समझाने वाले अंदाज में इतना बोला। और फिर सामने की तरफ देखा तो उसे चुड़ैल के पीछे, जहां पर काफी सारी चुड़ैल घेरा बनाकर खड़ी थी, उनके बीच उन्हें एक झलक किसी आदमी की नजर आई, और वो पूरी तरह से लाल रंग के अजीब से चिपचिपे द्रव्य में लिपटा हुआ लग रहा था। उसके ऊपरी शरीर पर कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे, और वो सारी औरतें अपने हाथ में वही लाल रंग का द्रव्य लेकर उसके पूरे शरीर पर मल रही हैं, और आधे से ज्यादा तो उसके चेहरे पर भी, जिसकी वजह से उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वो लगातार अपनी गर्दन ना में हिलाता जा रहा है। वो काफी डरा हुआ लग रहा है। उसका वो डर उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा है। जैसे ही वीरेश ने गौर से उस तरफ देखा, वो समझ गया कि वो आदमी और कोई नहीं, राजकुमार समर है। लेकिन वो चुड़ैल उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, ये बात उसे समझ नहीं आई। वो तुरंत ही वहां से आगे बढ़ा, और वो चुड़ैल जो उसकी तरफ ही बढ़ रही थी, वो वीरेश के रास्ते में आई, तो वीरेश ने तुरंत ही उस पर हमला किया, जिससे कि वो चुड़ैल बेहोश होकर उसके सामने ही गिर गई। और उसे अनदेखा करते हुए वीरेश चंद्रिका के साथ सीधा समर की तरफ ही बढ़ा। अभी कुछ देर पहले जो मदद के लिए चिल्लाती हुई आवाज वीरेश ने सुनी थी, वो उस तरफ ही बढ़ने लगा। राजकुमार समर, आप यहां कैसे पहुंचे? अपनी बात को पक्का करने के लिए जानबूझकर वीरेश ने राजकुमार का नाम लेते हुए तेज आवाज में चिल्लाकर ये बात बोली। और जैसे ही राजकुमार ने अपना नाम सुना, वो भी जानी पहचानी सी आवाज में, तो उसने तुरंत ही उस तरफ देखा, और वीरेश चंद्रिका को देखकर राजकुमार को बहुत ही राहत महसूस हुई, और उसे अब ऐसा लगा जैसे कि वो अब शायद यहां से बचकर निकल पाए इन चुड़ैलों के जाल से, जहां पर वो बदकिस्मती से फंस गया। वीरेश, चंद्रिका, बचाओ, बचाओ हमें इन चुड़ैलों से, ये लोग मेरे साथ पता नहीं क्या कर रही हैं और क्या करने वाली हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है। देखो, अपने पूरे शरीर की तरफ इशारा करते हुए उन दोनों से कहा, और वो बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से वीरेश की तरफ देख रहा है। लेकिन अभी राजकुमार की बात का जवाब देती हुई एक चुड़ैल ने कहा, आप तो बहुत ही जल्द हमारे सरताज बनने वाले हैं, आखिर हमारी चुड़ैलों की रानी श्वेतलाना का दिल जो आप पर आ गया है, पता है वो भी इसी तरह इंसानी खून में नहाकर आपके लिए तैयार हो रही है, और तभी तो उसका शरीर दमकेगा। वैसे तो वो पहले ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब वो शादी के लिए तैयार होकर आएगी ना, तब आप उसे देखते रह जाएंगे और खुद उससे शादी करने के लिए राजी हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई मर्द नहीं जो हमारी रानी श्वेतलाना के रूप पर मोहित ना हुआ हो। नहीं नहीं, मुझे किसी भी चुड़ैल से कोई शादी नहीं करनी, चाहे वो जितनी भी सुंदर क्यों ना हो, समर ने तुरंत ही मना करते हुए कहा। तो उसकी इस बात पर उस चुड़ैल को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो रानी श्वेतलाना की खास सेविका थी। उसने गुस्से में लाल आंखें करते हुए समर की तरफ देखा और अपने काले लंबे नाखूनों वाला हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसकी गर्दन पकड़ने से पहले ही उसने अपना हाथ रोक लिया। अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बांधते हुए वो समर को घूर कर देखने लगी और फिर अपने दांत पीस कर बोली, अगर आप हमारे होने वाले सरताज न होते तो आपकी इस गुस्ताखी की सजा मैं आपको यहीं देती। हमारी रानी श्वेतलाना के खिलाफ कोई भी नहीं बोलता है, कोई भी नहीं, लेकिन हमारी रानी सा ने खुद ही हम सबको ये कहा है कि आपको एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए, तो हम बस उनके हुक्म का पालन कर रहे हैं और कुछ नहीं, इसलिए अच्छा होगा कि आप भी इज्जत से उनका नाम लें। एकदम धमकी भरे अंदाज में उस चुड़ैल ने समर से ये बात कही तो उसका ऐसा डरावना रूप देखकर समर एकदम अंदर तक सहम गया और मन ही मन भगवान से अपनी जान के लिए प्रार्थना करने लगा। और अपने सामने खड़ी उसे चुड़ैल का इतना भयानक रूप देखकर तो उसका गला भी सूख गया। उसने गले में फंसा हुआ थूक निगलकर गला गीला किया और उस चुड़ैल की तरफ देखकर सिर्फ अपनी पलकें झपकाई, और समर चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आखिरी उम्मीद अब वीरेश और चंद्रिका ही हैं। अगर वो दोनों वहां पर उनके बीच आते हैं और समर को बचाते हैं तो ही वो वहां से बच सकता है। इसके अलावा समर ने भी वहां से निकलने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि वो उन सब के बीच बहुत लाचार महसूस कर रहा है और वो लोग उसे उसकी जगह से हिलने तक नहीं दे रही। इसके अलावा शैतानी शादी की रस्मों के नाम पर पता नहीं क्या क्या उसके साथ कर रही हैं। ये सब कुछ सोचते हुए समर एकदम हताश हो गया था, लेकिन तभी उसे सामने से अपनी तरफ आते हुए वीरेश और चंद्रिका नजर आए। उस एक चुड़ैल के इस तरह से बेहोश मने पर भी बाकी सारी चुड़ैलों का ध्यान उसकी तरफ नहीं हुआ और बोलो कभी भी पहले की तरह अपने अपने काम में लगी हैं और राजकुमार उनसे अपना हाथ पैर सब छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। छोड़ दो राजकुमार समर को। उसी जगह पर वीरेश की बहुत ही तेज आवाज गूंजी और उसकी आवाज सुनकर वो सारी औरतें जो राजकुमार समर के शरीर पर कुछ मल रही थीं वो एकदम ही रुक गईं, क्योंकि अब तक उन्हें लगा था कि जो कोई भी वहां पर आया है वो सिर्फ एक मामूली इंसान है जिसके लिए उनमें से एक चुड़ैल भी भारी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से उसने उसे चुड़ैल को अपनी शक्तियों से बेहोश कर दिया और बाकियों को भी चेतावनी दे रहा है, वो सभी रुक गईं और मुड़कर पीछे की तरफ देखने लगी। वीरेश थोड़े गुस्से में उन सब की तरफ ही बढ़ रहा था। उन पांच चुड़ैलों में से एक जो बीच में खड़ी थी और वो रानी की खास सेविका चुड़ैल है, उसने बीच में आते हुए कहा, हम यहां पर तुम्हारा आदेश मानने नहीं बैठे हैं जो तुम्हारे बोलने पर अपने सरताज को छोड़ देंगे, और तुम्हारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो तुम खुद करने के लिए यहां पर आए हो। और छोड़ दो वहां, ये सब कुछ नहीं चाहते हैं तो इस तरह उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। वीरेश ने इस तरह से आगे आते हुए उस चुड़ैल की बात का जवाब दिया और उसकी आंखों में जरा सा भी डर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे पता है अपनी शक्तियों के बल पर वो उन चुड़ैलों का भी सामना कर सकता है। वीरेश को इस बात का पूरा भरोसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसे पता है वो वहां पर आ गया है और इतनी मुश्किलों के बाद राजकुमार को भी उसने ढूंढ लिया है, तो अब वो कैसे भी करके उसे अपने साथ वहां से बचा कर ले जाएगा। चंद्रिका ने उसके हाथ को हल्के से दबाते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ किया और बोली, क्या कर रहे हो तुम? क्यों उन चुड़ैलों को गुस्सा दिला रहे हो? जो भी करना है शांति से करो। इस तरह सामने से लड़ाई करोगे तो बाद में हम पर ही भारी पड़ेगा।
मैं उन्हें गुस्सा नहीं दिला रहा हूँ, मुझे खुद गुस्सा आ रहा है इन पर। और तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है क्या इन चुड़ैलों पर? किस तरह से इन सब ने राजकुमार को देखो पकड़ कर रखा हुआ है और पता नहीं क्या क्या कर रही हैं उसके साथ। और वो तो तुम्हारा भाई है, लेकिन फिर भी तुम खुद डर रही हो इनका सामना करने से। इस तरह बचाओगी तुम वसुंधरा की जान? वीरेश को गुस्सा तो उन चुड़ैलों पर आ रहा था, लेकिन चंद्रिका ने उसे ऐसा बेवकूफी भरा सवाल किया तो उसका सारा गुस्सा बेवजह ही चंद्रिका पर निकल गया। इन सब में चंद्रिका की भी गलती नहीं है, उसने ये सब कुछ ऐसा कभी भी नहीं देखा है। पूरी जिंदगी वो राजमहल के अंदर रही है, बहुत कम ही वो महल से बाहर आई थी, और जब आती भी थी तो पूरी सुरक्षा के साथ। उसके सामने की सारी चीजें नहीं आती थी। उसके लिए ये काली शक्तियां, चुड़ैल, पिशाचिनी देखना कोई आम बात नहीं है, वो इन सारी चीजों से घबरा जाती है। फिर भी हिम्मत करके वो यहां जंगल में इस सफर पर निकली है। वीरेश की बातें सुनकर चंद्रिका को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ बोल नहीं पा रही है क्योंकि उसे डर भी लग रहा है और साथ ही उसे ये भी नहीं पता है कि क्या करना। और उसे लगता है अगर वो तो बस एक मामूली इंसान है, अगर वो किसी भी चुड़ैल या बुरी शक्ति से मुकाबला करने के लिए जाएगी वो उनके सामने एक भी मिनट नहीं टिक पाएगी, और वीरेश को वो ये बात नहीं समझा पा रही है। वीरेश इस तरह गुस्से में वहां से आगे बढ़ा और उसने एक झटके में उन सारी चुड़ैलों पर हमला किया, लेकिन तभी वो बीच में खड़ी चुड़ैल उसने वीरेश का बार रोक लिया। वो काफी शक्तिशाली और अनुभवी लग रही थी, उसकी उम्र भी बाकी चुड़ैलों से ज्यादा होगी, लेकिन देखने में वो सभी एकदम खूबसूरत 20 से 30 साल की उम्र की औरतें लग रही थी, और जिस तरह के कपड़े उन सब ने पहने हुए थे वो भी गांव की औरतों की ही पोशाक होती है, जिससे कि कोई भी आसानी से धोखा खा जाए। वीरेश भले ही अकेला है, लेकिन फिर भी राजकुमार को बचाने की वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा। उसने दोबारा से बाहर किया, लेकिन इस बार उन 4-5 जितनी भी चुड़ैलें वहां पर थी उन सब ने मिलकर उन पर हमला किया। वीरेश उनके हमले का जवाब दे पाता उससे पहले ही एक बड़ा सा नीले रंग का चमकदार गोला उसके सुरक्षा घेरे पर आकर लगा और एक झटके से उसकी सुरक्षा घेरा टूट गया और वीरेश तुरंत ही चंद्रिका के सामने आ गया और चंद्रिका की तरह मुंह घुमाते हुए उसने पूरी तरह से चंद्रिका को ढक लिया। इस बीच समर वहां पर अकेला था। चुड़ैलों का ध्यान जैसे ही वीरेश की तरफ हुआ, समर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और वहां से किनारे पर गया और इधर उधर वो अपने कपड़े ढूंढने लगा। थोड़ी दूर जमीन पर पड़ा हुआ उसे अपना कपड़ा मिल गया और उसने तुरंत ही उसे पहन लिया और वो अपने शरीर से वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था जो वो उसके शरीर पर मल रही थी। उससे बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही थी। वो लाल रंग का था तो समर को वो खून जैसा ही लग रहा था, लेकिन समर ने वो छुड़ाने की कोशिश की तो वो उसके शरीर से नहीं छूटा, इसलिए समर ने वैसे ही अपने कपड़ों को पहन लिया और चेहरे पर लगा हुआ खून छुड़ाने की कोशिश करने लगा। क्रमशः क्या श्वेतलाना समर से शादी करने में कामयाब हो जाएगी और क्यों कर रही है वो ऐसा? क्या सच में समर उसे इतना पसंद आ गया है या फिर इसके पीछे उसका कोई और भी छिपा हुआ मकसद है? और क्या वीरेश चंद्रिका मिलकर बचा पाएंगे खुद को और राजकुमार को? सब पता चलेगा आगे आने वाले एपिसोड में। जब तक के पढ़कर कहानी पर कमेंट जरूर करिए।